हमने पहले दिन से ये अनाउंसमेंट की थी कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं और हम ये जो पॉलिटिक्स करेंगे ये प्रिंसिपल्स और असूलों की बुनियाद पे करेंगे। हमने बाज़ प्रिंसिपल तैयार किए थे जिनमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अफरीत से निकालना, पाकिस्तान की आज़ाद दाखिला और खारजा पॉलिसी बनाना, पाकिस्तान में एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, पाकिस्तान की इमीडिएट जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए फ़ौरी इकदाम करना और पाकिस्तान में तमाम मकातब फ़िक्र को आज़ादाना हैसियत से अपने अपने उमूर को अंजाम देने की आज़ादी देना, वो जो आईन में गारंटेड है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हों। ये वो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जिनकी एक मिसाल मैंने आपको दी कि जिन पे हम इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से नेगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत हमारी चल रही है और इन जनरल हमारी इन तमाम मौक़ों को एक्सेप्ट किया गया है हर जगह। लिहाजा वो पॉलिटिकल पार्टियाँ कि जो इन इश्यूज़ पर खुल खुला के हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हों उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हमारा अलायंस मुतवक्के है। और मैं ये अर्ज़ करूं कि चूंकि हम पाकिस्तान में दो तरह की वार्स हैं, एक वार ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ग्रुप ने खालिस्तन पॉलिटिक्स की है सेक्टेरियनिज्म की बुनियाद पे, लोगों को फिरके की बुनियाद पे तकसीम करने की बुनियाद पे। हमारी जंग उन लोगों से है, सियासी जंग। हमने अपनी सियासी जंग का स्लोगन ये रखा है कि उन्होंने अगर लोगों को शिया और सुन्नी में तकसीम किया है तो मजलिस-ए-वाहदत मुस्लिमीन लोगों को शिया और सुन्नी की तकसीम से निकाल के मुसलमानों के एक मरकज़ के ऊपर इकट्ठा कर देगी, इस्लाम की बुनियाद पर इकट्ठा कर देगी। बस हमने उन तमाम सियासी जमातों के साथ भरपूर तरीके से बातचीत की है, मामलात को आगे बढ़ाया है और मैं समझता हूँ कि वो पार्टियाँ के जिन्होंने डायरेक्ट दहशतगर्दों को पॉलिटिकल एक्सेस दी है और दहशतगर्दों ने जिनके कंधों पर सवारी करके पूरे पाकिस्तान में मुसलमा मकातब फ़िक्र इस्लामी को काफ़र कहा है, उन दहशतगर्दों को तो यकीनन हमने पॉलिटिकल सीन से आउट करना है, या वो दहशतगर्द के जो मुख्तलिफ जगहों पर डायरेक्ट अपने नामों के साथ खड़े हैं उन लोगों के लिए भी हमने सरजमीन तंग करनी है और उन्हें हमने पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का मौका नहीं देना है। लेकिन वो दीगर तमाम पार्टियां कि जिन्होंने आपके मौक़ की तायद में दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत की है, दहशतगर्दों के मुकाबले में स्टैंड लिया है, लश्कर जंगवी को काफ़र और उन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक ना होने को खुल खुलाकर बयान किया है, तो वो तमाम पार्टीज इस वक्त हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और उसमें बड़ी मजहबी जमातें भी हैं कि मजहबी जमातों का वो इश्तराक अगर मजलिस-ए-वाहदत मुस्लिमीन के साथ मिलकर सामने आ जाता है तो उसका कम अज़ कम मतलब ये होगा कि हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही कामयाबी हासिल कर लिया। और वो कामयाबी ये है, हम पाकिस्तान में शिया सुन्नी रिफ्ट को ख़त्म करने कम करने में कामयाब हो गए हैं। दुश्मन की साजिश के मुकाबले में हमने बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है और पाकिस्तान में हम मोतदिल क़ुतों को इकट्ठा करके तकफीरी ग्रोहों को और उन ग्रोहों को जो गैर मुल्की आकाओं की ख्वाहिश पर पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म को रवाज देना चाहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए उनके लिए ज़मीन हमने तंग कर दी है। तो मैं समझता हूँ ऐसी तमाम पार्टियाँ ख्वाह साहबज़ादा फजल करीम साहब मरहूम की जमात हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, सुन्नी तहरीक हो, सरवत एजाज कादरी साहब की, या इसी तरह तहरीक इंसाफ हो, हत्ता खुद जमात इस्लामी, उनके साथ भी हमारी बड़ी अच्छी बातचीत जो है वो चल रही है। तो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पीपल पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत ज़रूर चल रही है। तो हमारी बातचीत चल रही है, आउटकम क्या आता है क्या नहीं आता वो मेरे ख्याल इंशाल्लाह आइंदा चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डिसीजन जो आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला काम फ़िज़ा बनाना था, वो फ़िज़ा बन गई। लोग समझ रहे हैं मुल्क के लिए ख़तरा कौन है, ये तकफीरी ग्रोह हैं। लोग समझ रहे हैं ये तकफीरी ग्रोह कैसे काम करते हैं, ये पार्लियामेंट को अपनी बैसाखी बनाते हैं, ये असम्बलियों के अंदर जाते हैं फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये एक एक वोट की बुनियाद पर मुशर्रफ जैसी पर्सनैलिटीज़ को ब्लैकमेल करते हैं। हम इन लोगों को असम्बलियाँ यरगमाल नहीं बनाने देंगे, लिहाजा हमारी पॉलिसी ये है, नंबर एक तमाम मुतदल क़ुतों के साथ मिलकर इनके लिए अवामी फ़िज़ा तंग करना, नंबर दो जहाँ डायरेक्ट ये लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ इनके मुकाबले में ऐसा अलायंस तरतीब देना या देने की कोशिश करना कि जिसके नतीजे में इनकी शिकस्त जो है वो करीब तरीन हो जाए। तो ये तमाम उमूर हम अंजाम दे रहे हैं और इसमें हमने शिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी, अहले सुन्नत की जमातों को भी, और इसमें हमने सियासी जमातों को भी और मजहबी सियासी जमातों को, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया है और उसमें हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि ये लोग असम्बली तक पहुँच कर हमारे पोलिटिकल प्रोसेस को यरगमाल न बना सकें। मैं समझता हूँ ये बात तो यकीनी है कि कुछ पावर्स ऐसी हैं कि जिनकी जो पाकिस्तान के अंदर कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से वो अपनी सेटिंग करना चाहती हैं वो नहीं बन पा रही, लिहाजा वो इलेक्शन को लिंगरान करके, इलेक्शन को डिले करके अपने अहदाफ के हसूल के लिए मजीद टाइम गेन करना चाहेंगी, इसका इम्कान मौजूद है। बस वो क्या करेंगी, ब्लड शेड, और पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत को वो रवाज देंगी, वो सेक्टेरियनिज्म को, वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस को सबोताज करने के लिए रैलियों पे, प्रोटेस्ट पे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे, कॉर्नर मीटिंग्स पे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को, उनको हिट करने की कोशिश करेंगी। और इसी तरीके से ये दूसरा मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीसफुल इलेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ ज़रा बराबर भी डाउट है वहाँ हम आर्मी की, आर्म फोर्सेज की मदद तलब करें, जैसे कराची के अंदर है, लोगों के वोट खुद से कास्ट हो जाते हैं, लोगों को वोट कास्ट करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर जगह, बहुत सारी जगहों पे हमने ये मालूमात मिली है कि गलत वोट बने हुए हैं, जेली वोट बने हुए हैं। तो ऐसे मौके पे इलेक्शन प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेहतरीन जगह और बेहतरीन ट्रैक पर लाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट का बेहतरीन होना ज़रूरी है, वोटर को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है, वरना इलेक्शन कमीशन भी फेल्ड, वरना पाकिस्तान की निगरान गवर्नमेंट भी फेल्ड। वोटर को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि उसकी जान की भी हिफाजत होगी, उसके वोट की भी हिफाजत होगी, और उस प्रोसेस के अंदर उसको कहीं भी हरासमेंट का सामना नहीं होना पड़ेगा जिसके नतीजे में उसे जाके वोट देना है। तो मैं समझता हूँ कि उससे ही पहले अगर खुद वोट मांगने वालों की ज़िंदगी और जान खतरे में पड़ जाए तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस सबोताज होने का इम्कान है। लिहाजा इस पे एक ग्रैंड मीटिंग करके इलेक्शन कमीशन, आर्म फोर्सेस, निगरान गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को ऑन बोर्ड लेके फौरी तौर पे बड़े और एग्रेसिव स्टेप्स उठाकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके ही इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, और यही हकीकी रिजल्ट्स होंगे जिसके नतीजे में अवाम अपना हकीकी हक के रायदही का वोट इस्तेमाल करके चेंज को यकीनी बना सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टैंड है, बड़ी एम्बिगिटी है इसके अंदर। एम्बिगिटी क्या है? नंबर एक, बदकिस्मती के साथ हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ मज़हब और फिरके की बुनियाद पे कत्लेआम तो जायज़ है, आपकी नस्ल कुशी जायज़ है, आपको इलाकों से निकालना जायज़ है, आपके नस्लों की नस्लों को कत्ल कर देना जायज़ है, लोगों से गाड़ियों गाड़ियों से उतार के उनको शियत के जुर्म में उनको कत्ल करना जायज़ है, लेकिन मसलक की बुनियाद पे आपको वोट मांगने की इजाज़त नहीं है। ये खुद हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बना है? क्या पाकिस्तान के आईन में ये नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई कानून जो है वो इस्लाम के मुकाबले में नहीं बन सकता, कुरान सुन्नत के मुकाबले में नहीं बन सकता? क्या पाकिस्तान के आईन में नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में तमाम मकातब फ़िक्र को मजहबी आज़ादी हासिल होगी, अपने अपने मरासम में, अपने अपने उमूर को अंजाम देने में? फिर क्या आप लोग, अगर किसी की ये हक सलब किया जा रहा है, आइनी हक सलब किया जा रहा है, और वो सियासी प्रोसेस के ज़रिए से इस आइनी हक को दोबारा से लेने की कोशिश करता है, आप उसको इससे रोक सकते हैं? मैं समझता हूँ ये बात बड़ी इलॉजिकल है। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इसके अंदर आपको इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक कल्चर, उसके मुताबिक बात करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक स्टैंड लेना पड़ेगा। यही आर्टिकल 62 कहता है इसका, इलेक्शन रूल्स का, और यही आर्टिकल 63 कहता है आइन के। आर्टिकल 62 63 बिल्कुल वाज तौर पर ये एंडोर्स करते हैं कि आपको उम्मीदवार को भी उस छलनी से गुजारना है कि वो भी इस बुनियादी क्राइटेरिया को मीट करता हो। तो क्या उम्मीदवार इन इश्यूज़ पर बात नहीं करेगा? आपने लोगों को फिल्टर किया है इस छलनी की बुनियाद पर, तो क्या ये इलेक्शन के स्लोगन्स नहीं बनेंगे? बस मैं समझता हूँ कि कुछ तजावज़ किया है इलेक्शन कमीशन ने, और तजावज़ से ज़्यादा अभी इलेक्शन कमीशन को ख़ुद पता नहीं है कि वो इसकी तशरीह क्या करते हैं, और तशरीह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसलन हमारे यहाँ एक शार चलता है, लबैक या हुसैन, वोट फॉर हुसैन का शार भी चलता है। ये अमूमन माशरती है, ये मजलिस इबादत ने ऑफिशियल नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एक माशरे के अंदर राइज है। ये कैसे माशरे से ले सकते हैं? और क्या हुसैन अलैहिस्सलाम की जब हम बात करेंगे तो ये एक फ़िरका वाराना बात होगी? क्या किसी शख्स का शिया होना एक फ़िरका वाराना बात होगी? ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वोट फॉर हुसैन अगर कोई एक बंदा कहता है, उसका मतलब है वो उन प्रिंसिपल्स को एंडोर्स कर रहा है जो हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रिंसिपल्स थे, उन असूलों को एंडोर्स कर रहा है जो सईदुश्शुहदा के। तो सुन्नी भी उसके साथ खड़ा होगा, देवबंदी भी उनके साथ खड़ा होगा, अहले हदीस भी उनके साथ खड़ा होगा, ये फ़िरका वाराना नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर बड़ा क्लियर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस पर वजाहत देने की ज़रूरत है। हमारा इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वो ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी को फिरके, मज़हब या मसलक की बुनियाद पे तोहीन नहीं की जानी चाहिए, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए।